शिक्षार्थियों, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम संचार माध्यम की भाषा पर विस्तार से चर्चा करते हैं। शिक्षार्थियों, भाषा अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है और बिना भाषा के संवाद की कल्पना नहीं की जा सकती है। जब हम संचार की बात करते हैं तो संचार कार्य का पूरा व्यापार भाषा के माध्यम से ही होता है, चाहे वह अखबार हो, रेडियो हो या टेलीविजन। हर जगह भाषा ही मुख्य साधन के रूप में होती है। इस कार्यक्रम में हम यह जानेंगे कि संचार माध्यमों की भाषा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, समाचार माध्यमों की भाषा का विकास किस प्रकार हुआ और समाचारों का जो प्रसारण किया जाता है और समाचार जो अखबारों में प्रकाशित होते हैं, उन दोनों में कहाँ अंतर होता है। ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपके मन में भी होते होंगे जब आप अखबार पढ़ते होंगे या टेलीविजन देखते होंगे। मुख्य रूप से यह जानना बहुत जरूरी है कि समाचार पत्रों के बारे में यह सच्चाई है कि उसमें भाषा का जो रूप होता है उसमें विविधता होती है। आप अलग अलग अखबार को उठाकर देखें तो आपको अंतर स्पष्ट हो जाएगा। आप नवभारत टाइम्स के अगर पाठक हैं तो उसकी भाषा अलग है, पंजाब केसरी पढ़ेंगे तो अलग भाषा मिलेगी, जनसत्ता की भाषा और शब्दावली अलग मिलेगी। तो जिस तरह पाठक वर्ग बदलने पर भाषा का स्वरूप बदल जाता है, उसी तरह विषय के अनुसार भी भाषा में परिवर्तन होता है। विज्ञान से संबंधित पत्रिका मान लीजिए आप पढ़ते हैं तो उसका स्वरूप अलग होगा, व्यापार से संबंधित पत्रिका का स्वरूप अलग होगा, कृषि के बारे में छपने वाले अखबार या पत्रिकाओं में अलग अलग शब्दों और मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि विषय के अनुसार भाषा बदलती जाएगी। आप खेलकूद के पृष्ठ को पढ़ते होंगे अखबारों में, वहां की भाषा अलग होती है। तो यह समझना आपको बहुत जरूरी है कि भाषा अलग अलग समय में अलग अलग रूप धारण करती है। जैसे आप व्यापार के पृष्ठ पर पढ़ते होंगे सोना लोहा चांदी चमकी गेहूं में उछाल, इस तरह की भाषा आम जीवन में हम नहीं करते, लेकिन व्यापार के जगत में इस तरह का प्रयोग किया जाता है। अब एक बात हम जान लें कि भाषा का विकास कैसे हुआ। देखिए, अगर हम देखें अंग्रेजों के आने से पहले तो उस समय सरकारी दरबारी और अदालती कामकाज फारसी और उर्दू में होते थे। ब्रिटिश शासन काल में अंग्रेजी के साथ उर्दू का प्रयोग होता रहा, लेकिन स्वतंत्रता के बाद हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया और इसके प्रयोग में व्यापक रूप से बढ़ोतरी हुई। बाद में शब्दों का निर्माण शुरू हुआ और जैसे जैसे विषय बदलते गए, नए तरह का कामकाज आने लगा तो नई शब्दावली भी बनी और नई वाक्य रचना भी विकसित होती गई। यहाँ यह भी समझना जरूरी है कि समाचार पत्रों की भाषा का लक्ष्य सवार कर किसी बात को प्रस्तुत करना नहीं होता, बल्कि अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना होता है। यह ठीक है कि भाषा जितनी सुगठित होगी, मजी हुई होगी, वह हमारे ऊपर असर करती है, लेकिन कहीं चमत्कार पैदा करने में भाषा जटिल और दुरूह ना हो जाए, यह ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि समाचार पत्रों में सरल भाषा का प्रयोग किया जाता है और कठिन शब्द आपको देखने को सामान्यतः नहीं मिलेंगे। अगर चुनौतियों की बात करें कि समाचार पत्रों की भाषा के समक्ष चुनौतियां क्या हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है वर्तनी की समस्या। आप जानते हैं कि जो समाचार पत्र में हिंदी का प्रयोग किया जा रहा है उसमें एकरूपता नहीं है। क्यों? इसके कई कारण हैं। जैसे हिंदी भाषी क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर हिंदी के अलग अलग रूप पाए जाते हैं। इसके अलावा हिंदी भाषी क्षेत्र में अनेक बोलियां हैं जिनमें अनेक असमानताएं हैं। तीसरा देखें तो अधिकांश हिंदी भाषी पढ़ने लिखने में तो हिंदी के मानक रूप का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब अपने परिवारजनों के साथ प्रयोग करते हैं तो स्थानीय बोली भी उसमें शामिल हो जाती है। इसके अलावा हिंदी भाषा का मानक रूप हिंदी क्षेत्र में तो एक सा मिल जाएगा आपको, लेकिन हिंदी की बोलियां जो हैं ब्रज, अवधी, भोजपुरी, आदमी आदि में अंतर आ जाएगा आपको। तो इस तरह से हिंदी के जो रूप हैं, वर्तनी से लेके शब्दावली, वाक्य प्रयोग, मुहावरे, सभी में अंतर आ जाता है। और इसीलिए हिंदी अखबारों में एक रूपता का आपको अभाव मिलेगा। एक और महत्वपूर्ण बात है कि अनेक शब्दों की वर्तनी के विषय में भी एक रूपता नहीं है। आप देखेंगे कि कई बार वर्तनी में भी अंतर होता है, खासकर अनुस्वार अनुनासिक के संबंध में आपको ज्यादा दिखाई देगा। अगर भाषा की सरलता को देखें तो उसके भी कई स्तर हैं अलग अलग। आपको जहाँ पे तकनीकी शब्दों का प्रयोग किया करना होता है वहाँ आप देखेंगे कि बहुत से समाचार पत्र अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे टेलीफोन, बस, कार, इनके लिए वही प्रयोग हो रहे हैं। इसी तरह से जो नई नई खोजें होती हैं या यंत्र या उपकरण आते हैं उनके नाम को भी यथावत अपना लिया जाता है। जैसे आप कंप्यूटर का प्रयोग, इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, इन्हें अंग्रेजी से यथावत ले लिया गया है। तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना अनुचित नहीं है, क्योंकि जो शब्द आपकी भाषा में मौजूद नहीं है अगर अंग्रेजी पर्याय लेकर वह समझ में बात आ जाती है तो वह फायदेमंद भी होगी। इसी तरह से अगर आप देखें कि भाषा का आदर्श रूप क्या होगा तो उसमें यह ध्यान रखना चाहिए कि लोक रुचि हो उसमें, अर्थात सरल, सुबोध और शुद्ध भाषा का प्रयोग किया जाए। और दैनिक जीवन में जिस भाषा का हम प्रयोग कर रहे हैं उसका अधिकांशतः प्रयोग किया जाए, तभी भाषा उपयोगी बनेगी। प्रसार माध्यम जो है, प्रसारण वाले रेडियो और टेलीविजन, उसकी भाषा पर थोड़ा विचार कर लेते हैं। रेडियो की भाषा आप समझें, आप जानते हैं कि रेडियो एक श्रव्य माध्यम है और जिसे पढ़े लिखे अनपढ़ सभी लोग सुनते हैं। और अगर माना जाए तो हमारे देश का सबसे सशक्त माध्यम भी है रेडियो। तो उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए? ऐसी भाषा होनी चाहिए जो श्रोताओं के समझ में आने वाली हो और उसमें कोई ऐसा जटिल भावबोध या विचार नहीं रखा जाए जिसे दोबारा समझना पड़े देखिए अखबारों में तो मौका होता है कि अगर एक पंक्ति आपको समझ में नहीं आई तो आप दोबारा पढ़ सकते हैं, लेकिन रेडियो में सुन रहे हैं आप तो जो लाइन आप सुन रहे हैं वो दोबारा नहीं सुन सकते। इसीलिए यहाँ पे यह ध्यान देना पड़ता है कि भाषा में कठिन शब्द भी नहीं लिए जाएं, वाक्य भी कठिन नहीं हो और शब्दावली भी कठिन नहीं हो। जैसे आप उदाहरण ले लें, सिलसिला, फिजूल, जोखिम, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनका आम तौर पर प्रयोग नहीं करना चाहिए, या बहुत से शब्द संस्कृत निष्ठ हैं उनका प्रयोग भी यहाँ नहीं होना चाहिए। इसी तरह से आप देखेंगे तो रेडियो की भाषा में कई बार वाक्यों का गठन इस प्रकार होता है जिससे पाठक की अरुचि हो जाती है और यह समझ में नहीं आता कि क्या कहा जा रहा है। जैसे रेडियो के माध्यम से बहुत से कार्यक्रम ऐसे भी आते हैं जो गूढ़ विषयों पर होते हैं, लेकिन आम जनता उसमें रुचि नहीं लेती। या कई बार आप तो नुक्कड़ नाटक वगैरह भी देखेंगे, उसमें सुनेंगे तो आपको लगेगा कि विषय क्या कहा जा रहा है, स्पष्ट नहीं है। तो यह ऐसा एक श्रव्य माध्यम है जहाँ रीटेक का चांस नहीं होता है, दोबारा आप नहीं सुन सकते। इसलिए रेडियो की भाषा में ध्यान रखना होता है कि उसमें सरलता और सहजता हो और जनरुचि के अनुसार हो। दूरदर्शन की भाषा की बात कर लें, दूरदर्शन में तरह तरह के कार्यक्रम आते हैं, धारावाहिक भी हैं, नाटक हैं, फिल्में, चित्रहार और कई तरह के कार्यक्रम आते हैं। तो यहाँ जो भाषा का महत्व है वह थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि चित्र का भी यहाँ स्वरूप सामने होता है। तो दूरदर्शन के समाचारों में भाषा का प्रयोग अपेक्षाकृत कम होता है और चित्रों तथा दृश्यों का प्रयोग अधिक होता है। इसलिए समाचार के साथ जो कुछ भी दिखाया जाता है उसका वर्णन शब्दों में करना जरूरी नहीं होता। जैसे मान लीजिए गणतंत्र दिवस परेड दिखाया जा रहा हो तो वहाँ जो आंखों देखा हाल होता है उसमें संक्षेप में चीजें बताई जाती हैं, क्योंकि सामने परेड चल रही है और वो हमें दिखाई भी दे रही है, तो जो दर्शक होते हैं वे समझ जाते हैं कि सामने क्या हो रहा है। इसके अलावा किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम या पुरस्कार वितरण कोई कार्यक्रम हो रहा हो तो वहां समाचारों का पूरा विवरण देने की जरूरत नहीं है, आप संक्षेप में भी बता देंगे तो सामने कार्यक्रम चल रहा है वह दर्शक समझ सकता है। उसी तरह से रिपोर्ट कोई प्रस्तुत की जा रही है तो वह सामने दिखाई दे रहा है हमें, तो कम शब्दों में ही उसके बारे में बताया जा सकता है। दूरदर्शन की भाषा में एक और महत्वपूर्ण बात है कि वाक्य छोटे यहाँ भी होने चाहिए, सरल और सीधे होने चाहिए और उनमें माधुर्य भी होना चाहिए। क्योंकि आप तो जब कोई भाषा कोई दूरदर्शन पे कुछ देख रहे हैं तो आपका चित्रों पर भी ध्यान है और शब्दों पर भी, तो शब्द जितने रोचक होंगे आपके देखने का जो आकर्षण है वो बढ़ता जाएगा।
जी
वाक्य संरचना जैसा मैंने बताया कि छोटी होनी चाहिए और उसमें उलझाव नहीं होना चाहिए। समाचार वाचन एक महत्वपूर्ण विधा के रूप में सामने आज है और उसमें लयात्मकता, उसमें साफगोई, शुद्ध उच्चारण, भाषा का ज्ञान और विशिष्ट शैली, ये महत्वपूर्ण गुण हैं।
जी
इनके माध्यम से ही समाचार वाचन प्रभावी होता है। अंत में एक महत्वपूर्ण पक्ष पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि
जी
आजकल संचार माध्यमों में भाषा पर अनुवाद की छाया बहुत ज्यादा है और आप को जानकर यह आश्चर्य होगा कि बहुत से समाचार पहले अंग्रेजी में आते हैं और उनका अनुवाद किया जाता है और तभी वह समाचार प्रसारित किए जाते हैं। तो अनुवाद की छाया कई बार दिखाई देती है और आजकल समाचारों में अंग्रेजी जो शब्दों का प्रयोग है वह भी व्यापक रूप में हो रहा है। तो हम लोग ये चाहेंगे कि हिंदी का जो वास्तविक स्वरूप है वह स्वरूप बना रहे और जो कठिन शब्द हैं उनकी जगह पर अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग कहीं कहीं पे किया जा सकता है।
जी
तो इस प्रकार से हमने आज संचार माध्यम की भाषा के बारे में विस्तार से पढ़ा और इसके महत्वपूर्ण पक्षों को जाना। धन्यवाद।